पहले वीतराग स्तोत्र पढ़ लें और फिर उसके बाद अर्थ बता लेंगे। शिवम सुत्थ बुद्धम परम विश्वनाथम शिवम सुत्थ बुद्धम परम विश्वनाथम न देवो न बंधुर्न कर्मा न कर्ता न बंधुर्न कर्मा न कर्ता न अंगम न संगम न स्वेक्षा न कायम न संगम न स्वेक्षा न कायम चिदानंद रूपम नमो वीतरागम रूपम नमो वीतरागम न बंधो न मोक्षो न रागादि दोषो न रागादि दोषो न योगम न भोगम न व्याधिर्न शोकः न भोगम न व्याधिर्न शोक न कोपम न मानम न माया न लोभम न मानम न माया न लोभम चिदानंद रूपम नमो वीतरागम चिदानंद रूपम नमो वीतरागम न हस्तो न पादो न घ्राणम न जिह्वा न पादो घ्राणम न जिह्वा न चक्षुर्न कर्णम न वक्त्रम न निद्रा न न वक्त्रम न निद्रा न स्वामी न भृत्यो न देवो न मर्त्या न भृत्यो न देवो न मर्त्या चिदानंद रूपम नमो वीतरागम चिदानंद रूपम नमो वीतरागम न जन्मम न मृत्यु न मोहम न चिंता न चिंता न क्षुद्रो न भीतो न कार्ष्यम न तंद्रा न भीतो न कार्ष्यम न तंद्रा न स्वेदम न खेदम न वर्णम न मुद्रा न खेदम न वर्णम न मुद्रा चिदानंद रूपम नमो वीतरागम नमो वीतरागम त्रिदंडे त्रिखंडे हरे विश्वनाथम त्रिखंडे हरे विश्वनाथम ऋषिकेश विध्वस्त कर्मादिजालम ऋषिकेश विध्वस्त कर्मादिजालम न पुण्यम न पापम न चाक्षादिगात्रम न पापम न चाक्षादिगात्रम चिदानंद रूपम नमो वीतरागम नमो वीतरागम न बालो न वृद्धो न तुच्छो न मूढ़ो न भ्रच्छो न तुच्छो न मूढ़ो न स्वेदम न भेदम न मूर्तिर्न स्नेहा न भेदम न मूर्तिर्न स्नेहा न कृष्णम न शुक्लम न मोघम न तंद्रा न मोघम न तंद्रा चिदानंद रूपम नमो वीतरागम रूपम नमो वीतरागम नाद्यम न मध्यम न अंतम न चान्यत् न मध्यम न अंतम न चान्यत् न द्रव्यम न क्षेत्रम न कालो न भावः न क्षेत्रम न कालो न भावः न शिष्यो गुरुर्नापि हीनम् न दीनम् गुरुर्नापि ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ರೂಪಂ ನಮೋ ಗೀತ ರಾಗಂ ರೂಪಂ ನಮೋ ಗೀತ ರಾಗಂ ಇದಂ ಜ್ಞಾನ ರೂಪಂ ಸ್ವಯಂ ತತ್ವವೇದೀ ಸ್ವಯಂ ತತ್ವವೇದೀ ನ ಪೂರ್ಣಂ ನ ಶೂನ್ಯಂ ನ ಚೈತ್ಯಂ ಸ್ವರೂಪಂ ನ ಶೂನ್ಯಂ ನ ಚೈತ್ಯಂ ಸ್ವರೂಪಂ ನ ಚಾನ್ಯೋ ನ ಭಿನ್ನಂ ನ ಪರಮಾರ್ಥಮೇಕಂ ಪರಮಾತ್ಮೇಕಂ ಚಿದಾನಂದ ರೂಪಂ ನಮೋ ಗೀತ ರಾಗಂ ಚಿದಾನಂದ ರೂಪಂ ನಮೋ ಗೀತ ರಾಗಂ ಆತ್ಮ ರಾಮ ಗುಣಾಕರಂ ಗುಣನಿಧಿಂ ರಾಮ ಗುಣಾಕರಂ ಗುಣನಿಧಿಂ ಚೈತನ್ಯ ರತನಾಕರಂ ಸರ್ವೇ ಭೂತಗತಾಗತೇ ಸುಖ ದುಃಖೇ ಭೂತಗತಾಗತೇ ಸುಖ ದುಃಖೇ ಜ್ಞಾತೇ ತ್ವಯಿ ಸರ್ವಗೇ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಾಧಿಪತೇ ಸ್ವಯಂ ಸ್ವಮನಸಾ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಾಧಿಪತೇ ಸ್ವಯಂ ಸ್ವಮನಸಾ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ಯೋಗೀಶ್ವರ ಯೋಗೀಶ್ವರ ವಂದೇ ತಂ ಹರಿವಂಶ ಹರ್ಷ ಹೃದಯಂ ಹರಿವಂಶ ಹರ್ಷ ಹೃದಯಂ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಜಗದಾಭ್ಯುಚ್ಯತಾಂ ಅಭ್ಯುಚ್ಯತಾಂ ವೀತರಾಗ ಭಗವಾನ್ ಕೀ ಕಲಪನ್ನೆ ನಿತ್ಯ ಪೂಜಾ ಕಿ ಜೋ ಪೀಠಿಕಾ ಹೈ ಉಸ್ಕೆ ಕುಛ ಅರ್ಥ ಸಮಝೆ ಥೆ ಉಸ್ಮೇ ಆಗೆ ಔರ್ ಭೀ ಹೈ ವೋ ಔರ್ ಅಪನ್ ಸಮಝ್ತೆ ಹೈ ಅರ್ಹಂ ಇತ್ಯಕ್ಷರಂ ಬ್ರಹ್ಮವಾಚಕಂ ಪರಮೇಷ್ಠಿನಃ ಸಿದ್ಧ ಚಕ್ರಸ್ಯ ಸದ್ವೀಜಂ ಸರ್ವತಃ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಂ ಸಬ್ಸೆ ಬಂತಾ ಹೈ ಪಢ್ತೆ ತೋ ವೈಸೆ ಕಿ ಪಢ್ನಾ ಹೈ ಅರ್ಹಂ ಇತ್ಯಕ್ಷರಂ ಬ್ರಹ್ಮವಾಚಕಂ ಪರಮೇಷ್ಠಿನಃ ಸಿದ್ಧಚಕ್ರಸ್ಯ ಸದ್ವೀಜಂ ಸರ್ವತಃ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಂ ಯೆ ಜೋ ಅರ್ಹಂ ಹೈ ಐಸಾ ಜೋ ಅರ್ಹಂ ಅಕ್ಷರ ಕಹಾ ಗಯಾ ಹೈ ಅರ್ಹಂ ಇತಿ ಅಕ್ಷರಂ ಬ್ರಹ್ಮವಾಚಕಂ ಇಸ್ಕಾ ಅರ್ಥ ಕ್ಯಾ ಹೈ ಯೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅರ್ಥಾತ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಕಾ ವಾಚಕ ಹೈ ಅರ್ಹಂ ಕೆ ಅರ್ಥ ಕ್ಯಾ ಹುವಾ ಪರಮಾತ್ಮ ಅರಂತ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಪರಮೇಷ್ಠಿನ ಅರಂತ ಪರಮೇಷ್ಠಿ ಕಾ ವಾಚಕ ಭೀ ಯಹ ಹೈ ಔರ್ ಸಿದ್ಧ ಚಕ್ರಸ್ ಸದ್ವೀಜಂ ಚಕ್ರ ಕಾ ಮತಲಬ್ ಹೈ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಸಮೂಹ ಸಿದ್ಧೋ ಕೆ ಸಮೂಹ ಕಾ ಯೆ ಬೀಜ ಹೈ ಅರಂತ ಹೋಕರ್ ಕೆ ಹೀ ಕೋಯಿ ಸಿದ್ಧ ಹೋಗಾ ಇಸ್ಲಿಯೆ ಬೀಜ ರೂಪ ಮೇ ಅರಂತ ಅವಸ್ಥಾ ಹೈ ಔರ್ ಸಿದ್ಧ ಅವಸ್ಥಾ ಉಸ್ಕಾ ಫಲ ಹೈ ತೋ ಕಹ ರಹೇ ಹೈ ಕಿ ಸಿದ್ಧ ಚಕ್ರಸ್ ಸದ್ವೀಜಂ ऐसे इस सिद्धत्व को की प्राप्ति के बीज को अर्थात अरहंत अवस्था को सर्वतः प्रणमामि हम मैं सब तरह से प्रणाम करके और अपनी इस पूजा की प्रक्रिया को शुरू कर रहा हूँ। पांचों परमेष्ठी को प्रणाम करने वाला नमोकार मंत्र मैंने पढ़ा, उसमें जो अरहंत अवस्था है वह सबसे पहले प्रणाम करने योग्य है, क्योंकि अरहंत भगवान ही हमें ये बताते हैं कि कौन सिद्ध है, कौन अरहंत है, कौन आचार्य और उपाध्याय और साधु है। पंच परमेष्ठी को बताने वाले भी अरहंत परमेष्ठी हैं, इसलिए सबसे पहले हम उनको प्रणाम करते हैं। और कर्माष्टक विनिर्मुक्तम मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम सम्यक्त्वादि गुणोपेतम सिद्धचक्रम नमाम्यहम्। भगवान दो ही हैं, परमात्मा दो ही हैं, अरहंत और सिद्ध। पंच परमेष्ठी में अगर हम देखें तो दो परमात्मा हैं और बाकी तीन उत्तम आत्माएं हैं।
परम तो दो ही हैं और उत्तम आत्माएं आचार्य उपाध्याय साधु को मानेंगे, लेकिन परमात्मा किसको मानेंगे? अरहंत और सिद्ध को। अरहंतों को प्रणाम कर लिया। अब इसके बाद कह रहे हैं कर्माष्टक विनिर्मुक्तम, आठ कर्म हैं और जो इन आठों कर्मों से मुक्त हो चुके हैं, और मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम, मोक्ष रूपी लक्ष्मी के ग्रह में ये जो पहुंच चुके हैं। निकेतन का मतलब घर है, आवास, अर्थात जिनको मोक्ष प्राप्त हो गया। अरहंत भगवान को मोक्ष हो गया क्या? तो अभी क्या हुआ है? आधा काम हो गया। अभी वो जन्म मरण से मुक्त हो गए हैं। अरहंत भगवान जन्म मरण से मुक्त हैं, सिद्ध भगवान आठों कर्मों से मुक्त हैं। कर्म मुक्त सिद्ध भगवान और जन्म मुक्त अरहंत भगवान, जन्म मरण से मुक्त हैं। सम्यक्त्वादि गुणोपेतम, और आठ कर्मों को नष्ट करने से उनके भीतर कौन से आठ गुण हैं? तो कहते शायक सम्यक, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, या अनंत सुख की जगह अव्यावाद सुख कहें अपन, सूक्ष्मत्व, अगुरु लघुत्व, अवगाहनत्व, ऐसे, और हाँ ऐसे जो है आठ गुण, सम्मत नान दंशन वीर्य सोमम तहेव अवगहनम अगुरु लघु अव्वाबाहम अठ गुणा होंती सिद्धानम। रोज पढ़ते ये आठ गुण सिद्धों को आठ कर्मों के अभाव में प्राप्त हो गए। सिद्ध चक्रम नमामि हम, ऐसे सिद्धों के समूह को मैं प्रणाम करता हूँ। पूजा शुरू करने से पहले अरहंत और सिद्ध दोनों भगवानों को प्रणाम कर लिया, और इस पूजा का फल क्या होगा? इनके स्मरण से मुझे क्या होगा? विघ्नौघा प्रलयम जानति शाकनी भूतपन्नगा विषम निर्विशताम जाति स्तूयमाने जिनेश्वरे। हम संसारी हैं, हम संसारियों को छोटी छोटी बातों का बड़ा भय लगता है। हम संसार से उतने भयभीत नहीं हैं जितने कि संसार की छोटी छोटी बातों से भयभीत हैं। तो अब क्या करें? हम चाहते तो ये हैं कि संसार से पार हो जाएं, लेकिन जब तक संसार में हैं तब तक भय से मुक्त तो हों। तो कहते भय से मुक्त होने का एक ही उपाय है, स्तू इमाने जिनेश्वरे। अगर आप जिनेन्द्र भगवान की स्तुति करते हैं, जिनेन्द्र भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा रखते हैं, तो आप सभी प्रकार के भय से मुक्त हो सकते हैं, ऐसा अपने मन में और विश्वास बनाना चाहिए। क्या कह रहे हैं? विघ्न होगा प्रलयम यान्ति, कोई भी विघ्न नहीं आएगा, सारे विघ्न समाप्त हो जाते हैं जिनेन्द्र भगवान के। मगर विघ्नों को नष्ट करने के लिए मैं भगवान की पूजा नहीं कर रहा हूं, भगवान की पूजा करता हूं तो अपने आप सारे विघ्न खत्म हो जाते, इतना ही संपर्क है। क्यों? भगवान की पूजा करने से मेरे असाता कर्म दूर हो जाएंगे, असाता दूर हो जाएंगे तो काय का विघ्न? विघ्न कौन डालता है? हमारे असाता कर्म, हमारा अंतराय कर्म, जब वो ही नष्ट हो जाएगा तो विघ्न डालने वाले नहीं रहेगा, तो काय को आएंगे विघ्न? इसलिए मैं तो ऐसा उपाय कर रहा हूं, विघ्नों से बचने का उपाय नहीं कर रहा, जिस वजह से विघ्न आते हैं उसी से बचने का उपाय कर रहा हूं, और उससे बचने का उपाय यही है कि भगवान की स्तुति करूं। तो भगवान की स्तुति करने से सीधे सीधे विघ्न नष्ट होते हैं ऐसा नहीं, मेरे कर्म नष्ट होते हैं जिससे कि विघ्न अपने आप दूर हो जाते हैं। शाकनी भूत पन्नगा, अब ये बना दिया शाकनी और भूत, ये जो है व्यंतर जाति के देवों का कथन है इसमें, कि अगर कोई देवों के द्वारा भी बाधा आने वाली हो। चार प्रकार का उपसर्ग होता है, देवकृत उपसर्ग, मनुष्यकृत उपसर्ग, तिरंचों के द्वारा किए जाने वाला उपसर्ग, और प्रकृतिकृत उपसर्ग। मैं इस तरह की विपत्ति से भी बच जाऊंगा। विघ्नौघा प्रलमयान्ति शाकनी भूत पन्नगा, पन्नक कहते हैं सर्प को, हाँ उसके भय से, इन चीजों से लोग बड़े भयभीत रहते हैं। कहते इन सब के भय से भी हम भगवान का स्मरण करें तो मुक्त हो सकते हैं। और विषम निर्विष्टाम याति, और जो चीज विषाक्त है वो भी निर्विष हो जाती है। अर्थात भैया सबसे बड़ा विष कौन सा चढ़ा अपने ऊपर? मुंह का विष चढ़ा है, उस विष को भी निर्विष करने वाली है भगवान की भक्ति। और छोटे मोटे विष चढ़ जावे तो उनकी तो बात ही क्या है, वे तो सब अपने आप हट जाएंगे। इतना विश्वास चाहिए, नहीं तो आप करके नहीं देखने लगियो, नहीं तो आप करके देखने लगो कि हम तो, आपने कहा था कि विषम निर्विष्टा में आती, हम देखते हैं कि हम भगवान का स्मरण कर रहे हो, थोड़ा विष की चक्कर के देख रहे हैं, उपद्रव हो जाए, क्योंकि बहुत श्रद्धा चाहिए। हो जाएगा, विश्व भी निर्विश हो जाएगा, लेकिन आपके भीतर की श्रद्धा होनी चाहिए। तो सब लोग सिद्ध चक्र का पाठ करते हैं, लेकिन मैना सुंदरी को सिद्ध चक्र के पाठ से जो लाभ हुआ है, उस लाभ की आकांक्षा से करते हैं, सो लाभ बिल्कुल नहीं है। और उन्होंने लाभ की आकांक्षा नहीं करी थी, उन्होंने तो पूजा भक्ति करी थी कि मेरे पाप कर्म का उदय है, इसलिए ऐसा मुझे संयोग प्राप्त हो गया। क्या करूं मैं अपने पाप कर्म को काटने के लिए, मेरे पास एक ही उपाय है कि मैं पूजा करूं, इसलिए पूजा करी थी। मेरे विघ्न दूर करने के लिए नहीं करी थी, मेरे पापों को काटने, मैं अपने मोह को नष्ट कर दूं तो मेरे ऊपर किसी चीज का विष नहीं चढ़ सकता, मेरे मोह की वजह से मेरे ऊपर सारे विष काम कर जाते हैं, ऐसा अपने भीतर अगर भाव आ जावे तो इसी भाव के लिए अपन ने ये पहले पूर्व में भगवान से और विनती की है। अभी पूजा नहीं शुरू की है, भगवान की विनती की है अभी तो, और फिर कहते हैं कि अब जो है मैं भगवान के सामने और 8 द्रव्य लेकर के आया हूँ, तो उससे पूजा करूँगा। कैसे? उदक चंदन तंदुला पुष्प कईहा, पढ़ो वो घिसी पिटी वाली नहीं पढ़ना, जैसा पढ़ रहा हूँ वैसा पढ़ना, नहीं तो इसमें बहुत गलती होती है। उदक चंदन तंदुला पुष्प कईहा, चंदन तंदुला पुष्प कई, चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कईहा, सुधूप फलार्घ कई, धवल मंगल गान रवाकुले, मंगल गान रवाकुले, जिन ग्रहे जिन नाथ अहम यजे, जिन ग्रहे जिन नाथ अहम यजे। ज्यादा कठिन नहीं है, एक एक शब्द ठीक से पढ़े तो सब समझ में आ रहा है। उदक का मतलब जल होता, चंदन का मतलब चंदन, और तंदुल का मतलब चावल, अक्षत और पुष्प तो सब जानते। इनके द्वारा, कई अर्थात इनके द्वारा, जल चंदन अक्षत पुष्पों के द्वारा, और इतने ही नहीं, चरु, चरु का मतलब होता नैवेद्य, खाने पीने की सामग्री को नैवेद्य या कि चरु बोलते, तो नैवेद्य। और सुदीप, दीपक कौन सा कहलाता, चिटके रंगी भाई के जलता हुआ, बुझो दीपक, दीपक का हाउस है, इसलिए सुदीप लिखा है। हाँ, और अगर थोड़े तिल्लोय पंडती में जाओ पढ़ने के लिए, तो फिर वो उसका वर्णन करते कि कैसी ज्योति उसमें से निकल रही है, वैसा दीप, रत्न दीप, हाँ रत्नों का दीप, वो चढ़ाएंगे, सबसे श्रेष्ठ चीज हो सकती है वो चढ़ाएंगे। और सुधूप, ऐसा नहीं कि उसमें से गंध ही नहीं आ रही, धूप तो जरूर चढ़ाई लेकिन गंध ही नहीं, कहते सुधूप जो कि पूरे मंदिर के वातावरण को सुगंधित कर दे, ऐसी धूप लाया हूं। और फलार्घ कई, फल के द्वारा, और अर्घ कई है, इन सब के द्वारा। अर्घ कोई अलग चीज है क्या? नहीं, सबको मिला दो, लेकिन वे सब मिलना चाहिए। हाँ, भी अलग अलग दिखते हैं, नहीं तो जैसे कि सौंफ होवे, खसखस होवे, बूरा होवे और बादाम होवे, ये सब चीजें अलग अलग मिला दो तो ठंडाई का स्वाद नहीं आएगा, आएगा ये सब ऐसी मिल जावे कि फिर एक में एक हो जाए, अलग अलग नहीं दिखें। तो कहते ऐसे ही अपने अपने भावों की चाशनी में इन 8 को मैं पागूं तब बनेगा अर्क अर्क। ये एक एक चीज इंडिविजुअल भी मैंने चढ़ाई, और इन सबको अगर मैं इकट्ठा करके एक बना दिया मैंने, अर्घ, अर्घ के मायने होता है मूल्यवान, और अनर्घ के मायने होता है अमूल्य, मांग रहे हैं अमूल्य और चढ़ा रहे हैं मूल्यवान, सस्ता चढ़ाओगे सस्ता मिलेगा। हाँ, सस्ते से मतलब अपनी हिम्मत तो ज्यादा की है और कम चढ़ा रहे, इसको बोलेंगे सस्ता, ऐसा नहीं समझना, अपनी सामर्थ्य से कमती और दूसरी चीजों में अपनी सामर्थ्य से बढ़कर के, और भगवान की पूजा में अपनी सामर्थ्य से कंट्रोल के चावल लेता चढ़ा दो, सोधी भी नहीं है ही नहीं चढ़ा दो, टूटी फूटी है चढ़ा दो, कहे वो तो मालिक यहां जाना है, भगवान को चढ़ा रहा हूं मैं, त्याग कर रहा हूं अपनी प्रिय वस्तु का, त्याग कर रहा हूं, ये भावना होनी, तब फिर इन 8 द्रव्यों से और अर्घ के द्वारा अब कहां पर मैं पूजा कर रहा हूं, धवल अर्थात उज्जवल, मंगल गान रवा कुले, सन्नाटा खिंचा है ऐसी जगह पे नहीं, लोग कहते हैं कि ले बहुत हल्ला हो रहा हो तुम मंदिर में, लोग पूजा कर रहे हो भैया को हल्ला मालूम पड़ रहा है, कह रहे कि हल्ला हो रहा हो तो मंदिर में, तो आप दूसरे की पूजा को हल्ला समझ रहे हैं? उसमें तो लिखा ही हुआ है, जहां सन्नाटा खिंचा है ऐसे जिनालय में नहीं गया हूं। धवल मंगल गान रवा कुले, जहां ऐसा है कि धवल है, उज्जवल मंदिर है, और जहां मंगल गान का रव, रव का अर्थ होता है ध्वनि, आकुले अर्थात व्याप्त है, जहां मंगल गान की ध्वनि सब जगह व्याप्त हो रही है, पूरा मंदिर ठसा ठस भरा हुआ है, काय से मंगल गान से भरा हुआ, जहां जिस कोने में चले जाएं जय 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 हो रही है, भगवान की पूजा के स्वर सुनाई पड़ रहे हैं कानों में, ऐसे धवल मंगल गान से युक्त में जिनालय में, और जिन ग्रहे ऐसे जिनेंद्र भगवान के आलय में, जिन नाथ अहम यजे, यज धातु पूजा के अर्थ में आती है, मेन आठ द्रव्य और अर्घ के द्वारा उज्ज्वल मंगल गान से युक्त जिनेंद्र भगवान के घर में जिनेंद्र भगवान की पूजा शुरू कर रहा हूं। बस ये सीधा सीधा इसका अर्थ है। इस तरह अपन इस अर्घ को कितनी बार, खूब बार चढ़ाते हैं, 10-15 अर्घ तो चढ़ाते ही होंगे शुरू में और आखिरी में, सब मिला करके, सबका नाम ले लेकर के, भैया कोई असंतुष्ट न हो, आप भी थोड़ो ले लो, आप भी थोड़े ले लो, कृत्रिम अकृत्रिम जिनालय को भी चढ़ा दो, महावीर स्वामी हालांकि एकदम करी, महावीर स्वामी को चढ़ाओ ही नहीं, महावीर स्वामी को चढ़ा दो, ये सब देवभक्त क्यों चढ़ा रहे हैं? किसी भी तरह से मन तो लगे, 10 बार पढ़ेंगे एक आध बार तो सही हो जाएगा, इसके लिए है ये। ये ऐसा नहीं है कि एक बार में ही काम चला दो, नहीं, अलग अलग, पता नहीं किस बार में मेरा मन लग जाएगा, 10 बार उसी चीज को करूंगा तो एक आध बार तो मेरा मन, अगर 9 बार चूक भी जाऊं तो कोई बात नहीं, एक आध बार मेरा मन लग जाएगा भगवान के पूजा करने का। इस अपेक्षा से बहुत प्रकार के अपन अर्घ चढ़ाते हैं, उन सब चीजों का याद करके, कम से कम 6 तो चढ़ाने की, द्रव्य क्षेत्र काल भाव और नाम और स्थापना, ऐसी 6 प्रकार की पूजा है तो 6 प्रकार के अर्घ तो कम से कम चढ़ेंगे ही, भगवान का नाम लेकर के, सहस नाम के ताही, ये हो गए नाम, फलाने सिद्ध क्षेत्र के ताही, कैलाश पर्वत के ताही, लेव क्षेत्र वंदना हो गई, सब ऐसे चढ़ाते चले जाते, सब चढ़ाते हैं, कम से कम 6 प्रकार की पूजा रोज करनी चाहिए, इसलिए अपन अर्घ चढ़ा के ही 6 प्रकार की पूजा कर लेते हैं, नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, फिर भगवान के मोक्ष कल्याणक के ताही लेव उसका भी एक चढ़ा दिया तो वो काल पूजा हो गई, इस तरह से सब। अब देखिएगा और क्या कह रहे हैं कि रहने दें, इतना ही रहने देते हैं, नहीं तो फिर प्रश्न उत्तर वाले बहुत मेहनत करके लिख के लाते हैं। इस तरह ये अपन ने भगवान की पूजा शुरू कर दी है। अब जो है, कैसे हैं भगवान और कैसे मैं पूजा कर रहा हूँ, मेरे लिए कैसे कल्याण हूँ, ऐसा और आगे जा करके कहेंगे अपन। ये कल के प्रश्न है क्या? अरे भैया, आज के प्रश्न अलग हैं। मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, मैंने आपको आहार देते वक्त आलू प्याज का त्याग किया, लेकिन धोखे से मैंने खा लिया। अब क्या करूं? तो अब जो है नहीं खाना, अब याद आ गया क्योंकि आदत पड़ी थी और धोखे से एक आध पीस आ गया खाने में, तो तुरंत अलग कर दिया और आगे से फिर नहीं खाना, क्योंकि अपन ने नियम लिया था और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लेना, यही उसका प्रायश्चित हो गया। छोटे बच्चों के लिए इतने, क्योंकि उनने जानबूझ करके बेईमानी नहीं करी, धोखे से जो है खा लिया। चलो ये हो गया। मंदिर में हम जब दर्शन करते हैं तो नीचे बहुत सारे चावल पैरों में गिरे रहते हैं, उन पर पैर पड़ जाते हैं, तो क्या इसमें पाप लगेगा? वैसे तो अगर देखा जाए, ये बात कुंडलपुर में आई थी और काफ़ी इस पर विचार भी हुआ कि अगर सभी लोग द्रव्य चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रख लेवें कि ये भगवान को चढ़ाई जाने वाली अत्यंत कीमती द्रव्य है, एक दाना भी नीचे नहीं गिरना, अगर ऐसा कर लेवें तो फिर नीचे गिरेगा नहीं, और नीचे नहीं गिरेगा तो पैरों में आने का सवाल नहीं, अभिनय होने का सवाल नहीं, अन्यथा अभिनय तो होती ही है। भगवान को चढ़ाए गए पुंज पर हमने, ठीक है मजबूरी है, रखना पड़ा, हमारे रखने का भाव तो नहीं था, लेकिन जमीन में पड़े हुए हैं, कहाँ से निकलें, उसी पर पैर पड़ते चले जा रहे हैं सबके पर है, तो वो द्रव्य पवित्र है, भगवान को चढ़ाई गई है या कि चढ़ाए जाने वाली है, दोनों स्थितियों में वो पवित्र है, उस पर पैर नहीं पड़ना चाहिए। पर प्रैक्टिकली बड़ा मुश्किल है, सब लोग थोड़ा सा चेंज कर लें, ऐसा ऐसा जाएं चढ़ाएं कि जिससे नीचे गिरे ही नहीं तो फिर बहुत मज़ा आ जाएगा। और वैसे अगर आप गिर रहे हैं नीचे और अपन जा रहे हैं तो फिर भैया ये थोड़ा बहुत तो दोष लगता ही है, और भी क्रियाएं हैं मंदिर में होने वाली, दिन में भी लगता, इन सब के लिए अपन नमोकार इत्यादि कर लेते हैं। नौ बार की जो भी हमारा इस पूजा पाठ में करते ना काय उस पर पूजा पाठ में जो भी हमारी त्रुटि हो गई हो, दर्शन करने में त्रुटि हो गई हो, तो अंत में नौ बार नमोकार मंत्र पढ़ के और फिर बाहर चले जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति शरीर के कष्ट के कारण मंदिर नहीं आ पाता, उस स्थिति में घर पर पूजा पाठ अर्चना कर ले तो कर सकता है क्या? यदि उसे किसी भगवान की तस्वीर के सामने या जिरवानी के सामने कर सकता भैया, जिसके उठने बैठने की सामर्थ्य नहीं है हैं शरीर की वजह से, तो फिर घर में जितना बने उतना धर्म ध्यान करना चाहिए। लेकिन इस बात को सुन करके अच्छे भले लोगों को भी घर में ही बैठ के पूजा न शुरू करना चाहिए कि महाराज ने तो कह दिया था, तो ऐसा नहीं लेना चाहिए उसका, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। त्रेसठ शला का पुरुष भरत ऐरावत में ही होते हैं या विदेह क्षेत्र में? भैया त्रेसठ नहीं, त्रेसठ तो भरत ऐरावत में ही होते हैं, संख्या त्रेसठ। शला का पुरुष तो विदेह क्षेत्र में भी होते, वहां तो हमेशा बने रहते तीर्थंकर, तीर्थंकर तो शला का पुरुष हैं, वहां पर भी होंगे, लेकिन त्रेसठ नहीं, वहां तो बहुत अधिक संख्या है। 160 तो तीर्थंकर होते हैं पांचों विदेह में मिलाकर, एक विदेह में 32 तीर्थंकर तो होंगे, उतने ही चक्रवर्ती होंगे, जितने तीर्थंकर हैं उनके हरेक के काल में चक्रवर्ती होंगे, नारायण प्रतिनारायण इत्यादि की संख्या भी उसी के अनुरूप होगी, इसलिए वहां 63 की संख्या नहीं बनेगी, पर शला का पुरुष तो वहां पर भी रहेंगे। ये जो 63 हैं वो भरत और ऐरावत की अपेक्षा से लेना चाहिए। अच्छा प्रश्न था आपका, दान कितने प्रकार का होता है, सबसे श्रेष्ठ दान कौन सा है? दान चार प्रकार का है, जो वास्तविक दान, पारमार्थिक दान और लौकिक दान अलग अलग हैं। लौकिक दान की चर्चा नहीं कर रहे, वो फिर करेंगे अपन। पारमार्थिक दान चार प्रकार के, जो मुनि आरिका श्रावक श्राविका चतुर्विध संघ को दिए जाते हैं, वो है आहार औषध उपकरण और अभय दान। हाँ, शास्त्र दान की जगह पर हमने कह दिया उपकरण दान, क्योंकि शास्त्र अकेले में तो पिची का मंडल नहीं आ पाएगा, और उपकरण में तो ज्ञान का उपकरण शास्त्र, संयम का उपकरण पीछी, शुद्धि का उपकरण कमंडलू, सब आ गए, इसलिए ये ब्रॉड शब्द है उपकरण दान। शास्त्र दान कहो या उपकरण दान कहो, बात एक ही है। अपन शास्त्र दान कहेंगे तो शास्त्र भी देंगे, अवसर आने पर पीछी भी देंगे, कमंडलू भी देंगे, है ना? इसलिए आचार्य समंतभद्र स्वामी ने उसको उपकरण दान कहा, बाकी सभी आचार्यों ने शास्त्र दान ही लिखा, उसको ज्ञान दान भी कहा है। तो इन सब में श्रेष्ठ कौन सा है? तो सभी आचार्य इस बारे में एक मत हैं, और सब ने एक मत से कहा है कि सबसे श्रेष्ठ आहार दान है। हाँ, सब आचार्यों ने, आप आश्चर्य करेंगे, और एक आचार्य भगवंत ने तो यहां तक लिख दिया कि आहार क्या दिया, मानो मोक्ष मार्ग दे दिया। क्यों? बिना आहार शरीर में गए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना, ये तो अन्न का कीड़ा है, इसके लिए संभालने के लिए तो आहार अनिवार्य है। चौथे काल की बात अलग है, लेकिन उसमें भी आहार तो करते होंगे, तीर्थंकर ने भी आहार किया है, ऐसा नहीं है कि उनने नहीं किया, उनका काम ऐसे ही चल गया। एक अकेले बाहुबली भगवान हैं जिन्होंने की दीक्षा ली और बैठ गए, साल भर में केवल ज्ञान लेकर के ही उठे, किसी के यहाँ गए ही नहीं आहार के लिए, ऐसा बहुत रेयर है। पर आहार दान को इसीलिए सबसे अच्छा, देखो जब भी अपन मनाते हैं अक्षय तृतीया मनाते हैं, वो क्या है, उस दिन से दान की प्रक्रिया शुरू हुई, आहार दान, दान तीर्थ की उपाधि मिली श्रेयांश और राजा को, इसलिए अपने यहाँ पर सबसे श्रेष्ठ दान उसी को माना गया है। होनी अनहोनी का ज्ञान कई बार पहले से हो जाता है, इसका क्या कारण है, ये इंट्यूशन कहलाता है, ये अपने अंदर क्षमता तो सबके भीतर है लेकिन दब गई है। जिसका क्षयोपशम ज्ञान शुद्ध ज्ञानावरण का आवरण ज़्यादा हट गया, उसको अपने बाह्य निमित्त देख करके होने वाले शुभाशुभ का ज्ञान हो जाता है, आगे ऐसा होने वाला, मुझे ऐसा लग रहा है, ये क्या चीज़ है, ये शुद्ध ज्ञान का विशेष क्षयोपशम है और कुछ नहीं। अष्टांग महानिमित्त ज्ञान जो है, जिसमें एक निमित्त ज्ञान है, वो बाह्य किसी भी चीज़ को देख करके और हम अंदर उस चीज़ के शुभाशुभ की कल्पना अपने भीतर आ जाती है, वो सब श्रुत ज्ञान का विशेष क्षयोपशम है, इसी को साइंस की भाषा में इंट्यूशन कहते हैं। एक हमें अंतर्ज्ञान या कि प्रीकॉग्निशन, पूर्वाभास, किसी भी घटना का पूर्व में आभास हो जाना, ये ज्ञान का विशेष छह उपशम है, उससे ये हो जाता। भैया सबको नहीं होता, बहुत रेयर केसेस में होता। क्या राशि का रत्न इत्यादि धारण करने से मनुष्य के जीवन पर प्रभाव पड़ता है? क्या इसका पहनना उचित है या नहीं है? भैया ऐसा है कि छोटी छोटी चीज़ों का भी अपने ऊपर प्रभाव पड़ता है। अपना उपादान कमजोर है, इसलिए बाह्य निमित्तों का बहुत जल्दी प्रभाव पड़ता है। कोई भी घटना घटित होती है, उसका प्रभाव पड़ जाता। अच्छी होगी तो अच्छा प्रभाव, बुरी होगी तो बुरा प्रभाव। अब ये जो स्टोन हैं, जितने भी जैम स्टोन हैं, उनमें भी अपनी एक इंद्री जीव तो वो भी हैं, उनके भी अपने पुण्य पाप उनके साथ लगे हुए हैं। वो जो इतना टुकड़ा दिख रहा है, वो हीरे का, वो एक इंद्री जीव का शरीर है, उसमें अंगुल के असंख्यात में भाग अवगाहना वाली कितनी जीव राशि रह सकती है? असंख्यात। हाँ, उतने इतने पीस में कितनी सी अवगाहना है उसकी, अंगुल के असंख्यात में भाग अवगाहना, अत्यंत छोटी अवगाहना है। उत्कृष्ट हो चाहे जघन हो, अंगुल के असंख्यात भाग ही है। तो आचार्य श्री कहते हैं कि भाई उसमें असंख्यात जीव राशि है, सबके अपने अपने कर्म हैं, वो हमने धारण करी, उसका भी हमारे ऊपर प्रभाव है, वे भी हमारे ऊपर प्रभाव डालती, सब तो डालती। देखो धूप में खड़े हो जाओ तो धूप लगन लगत कि नहीं लगन लगत, मोटी सी बात। ठंडी चीज में ठंडी मालूम पड़ती कि नहीं लगने, हवा चलने लगे ठंडी तो ठंडक लगती कि नहीं, प्रभाव डालती कि नहीं, वो ये बात अलग है कि हमारी सहन शक्ति ज्यादा है तो हम सहन कर लेते, नहीं है सहन कर सकती तो बीमार सीमार हो जाते, ठंड लग गई गर्मी लग गई है। तो इसी तरह ये भी है, छोटी छोटी चीजों का जिसकी सहन शक्ति खूब है उस पर प्रभाव नहीं पड़ता देखा जाता, और किसी का बहुत पुण्य हो गए तो कोई भी चीज का प्रभाव नहीं पड़ेगा उस बुरी चीजों का, और किसी का जरा ऐसा पाप का उदय हो गए तो और उसके पाप के उदय में और तीव्र हो जाता। तो इसको पाप पुण्य से जोड़ लेना भैया, कि अपने पुण्य के उदय में सब फेवर में हो जाती चीजें, और पाप का उदय हो गए तो चाहे तुम नगीना पहने रहो और चाहे तुम कछु करे रहो है, हाँ, वो पाप का उदय आपको छोड़ेगा नहीं। इतना जरूर है कि थोड़ा बहुत उसका असर कम हो जाएगा, जैसे कि पाप का उदय होवे और अपना कोई अच्छा सहयोगी होवे उस समय, तो वो अपने को पाप के उदय में भी संभाले रखता, अपना धैर्य बंधाए रखता। या अपनी सच्चे देवगुरु शास्त्र पे श्रद्धा हो और विपत्ति आ जावे तो भी अपन कहते भैया सब हो जाए, हम तो भगवान की पूजा पाठ करते हैं, ये तो विपत्तियां आती रहती हैं, ऐसा कहकर के हमें एक बल मिल जाता कि हमारे तो हम तो सच्चे देवगुरु शास्त्र की शरण में हैं, हमारा कुछ नहीं होगा। फिर भी विपत्ति आती है और हम शांति से उसको सहन करके आगे निकल, ऐसे ही इसको भी देना। क्या मंदिर में मुनि जनों के फोटो लगाना उचित है? यदि हाँ तो आपके मतानुसार मुनियों के फोटो भी लगाए जा सकते हैं क्या? अब भैया हमने पंडित जी से पूछा था है इसके बारे में, उन्होंने अपने वो हम लाना भूल गए किताब, हमने भैया जी को दे दी, वो जो बार 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 पूछते ना सब जने कि 24 घंटे, तो अब हमने और स्पष्ट पढ़ लिया और वो भी ढूंढ लिया कि कहाँ कहाँ लिखा है। त्रिलोक, त्रिलोक सार में लिखा और जम्बूदीप पंडक्ति में लिखा हुआ है कि दो दो प्रहर छः छः घंटे, छः चौको 24 घंटे होते तो छः छः घंटे एक एक निकाय के देव पूजा करते, इसलिए 24 घंटे अभिषेक होता, ये कन्फर्म हो, ये कैलकुलेशन भी लग गया। छह छह घंटे दो दो प्रहर एक एक निकाय के देव भगवान की अभिषेक करते हैं, सबकी ड्यूटी फिक्स है, छह घंटे आप, छह घंटे आप, छह घंटे ये और छह घंटे चार निकाय के देव हैं, भवनवासी वेंतर जोशी और बैमाने। तो उसी किताब में ये भी लिखा है इस प्रश्न के उत्तर में कि मंदिर में मुनि महाराज के फोटो लगाना चाहिए कि नहीं, तो उन्होंने लिखा कि बेदी के आसपास नहीं लगाना चाहिए, ना बेदी पर उन्हें रखना चाहिए, अन्यथा उनके लिए अर्घ इत्यादि चढ़ने की परंपरा चल पड़ेगी जो कि आगम सम्मत नहीं है, ऐसा लिखा उस किताब में, आप मंगा ली बस, तो उसको उत्तर उसी का है। वो हमारे अपने मतानुसार तो भैया ऐसी जगह लगाओ, मान लो लगाना भी है आपको, हम ये नहीं कह रहे, पंच परमेष्ठी में शामिल है लगाओ, लेकिन ऐसी जगह जहां अपन स्वाध्याय करते हैं, देखो जहां अपन बैठते वहां पर है स्वाध्याय का स्थान है, वहां लगा ली, हमारे पूर्व के जो आचार्य भगवंत हुए हैं उनके दर्शन हो जाएंगे, क्या ये देखो ये शांति सागर महाराज, अपने बच्चों को दिखा सकेंगे, देखो ये शांति सागर महाराज पहले हुए बड़े तपस्वी थे हैं, ये वीर सागर महाराज हुए, ये इस तरह इस भावना से अगर, और अगर इस भावना से कि जी हमारे महाराज इनको तनक ऊपर लगो चाहिए, बेबाले हुए को अपन हुआ करने थोड़ा नीचे लगा, ये बड़ी मुश्किल हमने देखा है, इसलिए हम कह रहे हैं आप बुरा नहीं मानना, हमने कई जगह ऐसा देखा। तो ये तो हो गया राग द्वेष का कारण, उनने उतर रखी थी हम इतने रखे, बेकल उतर खिसके हैं तो हम और अपने महाराज की आगे खिसके। रखी जानी चाहिए हमारे महाराज, ये राग द्वेष का कारण है। और अगर आप वाकई में मुनि आचार्य उपाध्याय साधु के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं तो फिर सभी को एक स्थान पर, और हम तो कहते कि मैं परिचय के पूर्वाचार्यों के लगाव समंतभद्र स्वामी को भूल गए, अकलंक स्वामी को कोई याद नहीं करता, विद्यानंदी महाराज जो कि सातवीं शताब्दी में कोई याद नहीं करता, कुंदकुंद स्वामी को, ये महान महान आचार्य पुष्पदंत भूतबली महाराज, इतने बड़े षटखंड आगम के रचयिता, हम और तुम तो उनके चरणों की धूल से भी के भी बराबर नहीं है। हम आई तो लगाएंगे इतनी बड़ी, और आचार्य भगवंत जो पूर्वाचारी हैं उनके तो सबसे पहले होना चाहिए कि ये हमारे पूर्वाचारी, परंपरा ऐसी चली हमारी, सब परंपराएं जो भी चली जितनी भी परंपराएं हैं सबको अगर वाकई में ऐसा करना है तो फिर कोई राग द्वेष नहीं होगा, आनंद भी आएगा, और स्पष्ट लिख दिया जाए कि इनके सम्मुख अर्घ इत्यादि नहीं चढ़ाएं, ये तो सिर्फ हमें इनसे परिचय प्राप्त करके इनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करनी चाहिए। देखो कितने बढ़िया से हो सकता है, और नहीं तो फिर यह सच चल रहा भैया, सच चलन दो अपन काय को बीच में बोलो। हाँ आपने पूछा इसलिए हमने कह दिया, आप जानो आपकी भली चलाई फिर क्या। हाँ, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, ये तो जो है ये तो फिर से आ गया वो प्रश्न, उसने दो बार लिख के दे दिया ज्यों की त्यों राइटिंग, एक बार शीश से लिखा एक बार पेंसिल। नहीं लिखा झूठ थोड़ी बोलेगा, नहीं लिखा। जब व्यक्ति घर की जवाबदारी से युक्त होता है, चार पांच व्यक्ति की जिम्मेदारी पालन पोषण की है, वो व्यक्ति नौकरी करता या धंधा करता उसको कोई सफलता नहीं मिलती, वो कई जगह काम की तलाश में भटकता, सफलता नहीं मिलती, सब लोग बात तो सुनते हैं लेकिन उसको समझने वाला कोई नहीं, ऐसे में उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उस व्यक्ति पर अपने सारे परिवार की जिम्मेदारी है। देखो भैया, पहले नंबर तो ये विचार करना चाहिए कि मुझे जो भी असुविधा हो रही है उसमें कोई कारण नहीं है, अन्य किसी को दोषी मानना ये ठीक नहीं है। ये कर्म पूर्व किए खोटे सह क्यों नहीं, मेरे किसी कर्म का उदय है। अब भी हम लोग रास्ता में चर्चा करते आ रहे थे, एक व्यक्ति के दोनों पैर इतने भारी और सूज गए हैं कि उठ बैठ नहीं सकते, हमें क्या विचार करना चाहिए? हमें उस पर दया आनी चाहिए। देखो अगर कोई मदद हो सके तो अपन कर दे, और उसको क्या विचार करना चाहिए? कोई मेरी मदद करे ऐसी आकांक्षा नहीं होनी चाहिए, बल्कि होना यह चाहिए कि हमारे किसी असाता की उदय से ये सब है, मुझे शांति और संतोष पूर्वक समता पूर्वक इसको सहन करना चाहिए, और निरंतर पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। अगर हम समीचीन पुरुषार्थ करेंगे तो धीरे धीरे पाप कर्म कट जाएंगे और सफलता मिलेगी। अकृत पुण्य की कहानी पढ़ो, धन्य कुमार चरित्र में अकृत पुण्य धन्य कुमार के पूर्व जीवन का नाम था, जिसने पाप ही पाप करे, अकृत पुण्य जिसने पुण्य किए ही नहीं उसको कैसी विपत्तियां आई, लेकिन जब उसने पुण्य किया थोड़ा सा उसका फल उसको मिलना शुरू हुआ तो जहां हाथ लगा दिया वहां सोना धन्य कुमार, हां मट्टी सोना बन गई, क्यों? अपने पुण्य। तो पुण्य और पाप है, पर इसमें मैं इतना ही कहूंगा कि जो व्यक्ति दया करके मदद करें तो मदद भी करनी चाहिए, अपने साधर्मी की अवश्य मदद करना चाहिए। ये भी अगर मालूम पड़ जाए कि सच्चे देवगुरु शास्त्र का मानने वाला है और विपत्ति में है, भैया हमसे ले लो मदद। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जो मदद ले रहा है वो कृतज्ञ रहे, हाँ उपकार माने और मदद का सदुपयोग करे। ऐसा ना हो कि आलसी होकर के दूसरे की मदद लेता रहे और खुद काम ना करे, अब तो बढ़िया आनंद होगा, सब समाज मिलके अच्छी बढ़िया मदद कर रही और अपन बैठे भैया खा रहे, ये भी नहीं होना चाहिए। दोनों बातें बता देता हूं, नहीं तो फिर मदद करने वाले का मन नहीं होता। इसलिए अगर दोनों को उपदेश है कि जिस व्यक्ति को विपत्ति है वो अपने पुण्य को बढ़ाए, धर्म ध्यान करे, छोड़े नहीं, और पूजा पाठ बढ़ा दो और अभिषेक, अब तो बिना अभिषेक देखे और मैं भोजन नहीं करूं, बिना पूजा किए भोजन नहीं करूं, मेरे ऊपर इतनी विपत्ति है मैं अवश्य ये करूंगा, काम की तलाश बाद में करूंगा, पहले भगवान की तलाश करूंगा। हाँ ऐसे विपत्ति के समय तो और धर्म ध्यान करके पुण्य कमाना चाहिए तो सब आसान हो जाता, यही हम कहेंगे और क्या कहें। आप आहार के समय अपने हाथ को कंधे पर क्यों रखते हैं? सही है तो ये कहलाती है मुद्रा। हाँ कि ये वैसे तो दिगंबर मुद्रा है, हैं? लेकिन ये आहार की मुद्रा है, जिससे लोगों को मालूम पड़ जाता है। और इतना ही नहीं, बड़ी सावधानी से जाना है और याचना नहीं करनी है, हाथ नहीं फैलाना है। हाथ कहां फैलेगा बताओ? और दूसरे हाथ में कमंडल और पिची एक एक में ले लेते। देखो एक एक में ले लेते, एक में कमंडल एक में पिची चले जाते। कहते नहीं, इतनी सावधानी, एक ही हाथ में कमंडल पिची और एक हाथ तो इस बात की सूचना दे रहा है कि मैं इस समय शुद्ध भोजन की गवेषणा में जा रहा हूं। भिक्षाचर्या है, याचना भी नहीं करना है, अपनी शर्त के मुताबिक जब मेरी शर्त पूरी होगी तब मैं हाथ फैलाऊंगा, अन्यथा नहीं। हाँ, अपनी अपनी शर्त के तहत, आपसे याचना वैचना नहीं, अपनी शर्त पूरी होने पर फिर अंजलि कर दूंगा कि हाँ दे सकते हैं आप, हमारी शर्त पूरी, नहीं तो बन, उसमें क्या देर थोड़ी लगनी है, इतना ही तो करना है इसमें। आप लिए खड़े रहो, देने वाला उस समय छोटा हो जाता है, ग्रहण करने वाला बड़ा है। अगर बंद कर ले तो देव देख कैसे आपके पास है, बहुत है देव। नहीं, देने का अहंकार नहीं करना, क्योंकि लेने वाला अगर ना ले तो क्या करेंगे हम, सब धरा रह जाएगा देने देने का भाव। तो इस अपेक्षा से ये सूचना है कि वे याचना नहीं करते और वे हमें सिर्फ इशारा कर देते हैं महाराज कि हम आहारचर्या के लिए आ रहे हैं, हैं? और अत्यंत सावधानी पूर्वक वे जाते हैं। ये इसमें मंदिर वेदी पर या वेदी के आसपास किसी क्या किसी मुनि या श्रावक का चित्र या चरणों के चित्र आदि लगाना उचित है? मंदिर के गर्भगृह में किसी का चित्र नहीं लगाना चाहिए। वेदी पर या वेदी के आसपास चित्र लगाना सर्वथा अनुचित है, क्योंकि इन स्थानों पर चित्र लगाने का कोई प्रयोजन नहीं है। यहाँ चित्र लगाना भगवान की ही आसाधना है। जिनालय में भी स्थान विशेष पर आचार्य मुनिराजों के चित्र लगाए जा सकते हैं, इधर उधर कहीं भी अव्यवस्थित चित्र लगाना उचित नहीं है। ये जवाब इस ग्रंथ में ज्यों का त्यों हमने आपको दे दिया। वो तो ठीक दिन वाणी। अब मैंने तो उत्तर देना मेरा काम, कहां क्या हो रहा मैं उसको सुधारने निकला क्या? मैं अभियान तो मैंने छेड़ा नहीं कि मैं जाऊं और सब मंदिरों में सबसे पहले कि उतारो सब फोटो वगैरह लगाओ, ये हमारा काम नहीं। और कागज लगा दूसरा और पढ़ के सुना दे। सुनो, वो तो अपन बाद में कर ले बातें, अभी जा तो सुन लो पहले। देखो, तीर्थंकरों के पंच कल्याणक एवं अकृत्रिम चैत्यालय अनादि नदन है। चतुर निकाय के देव अस्थानिक पर्व में नंदीश्वर दीप में जाकर चारों दिशाओं के अकृत्रिम चैत्यालयों में क्रमशः दो दो प्रहर करके 24 घंटे भगवान का अभिषेक और पूजन करते हैं। कहाँ का रेफरेंस है? ये रेफरेंस है आचार्य नैमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती त्रोकसार गाथा नंबर 973 से 977 और जम्बूदीप पंडित्ती संग्रह पंचम उद्देश्य गाथा 111। लो भैया, वैसे हमने अपनी जिंदगी में बहुत कम रेफरेंस दिए, मगर अब क्या करें, रेफरेंस देना पड़ रहा कि यहाँ लिखा हुआ है ना। हमारी प्रामाणिकता में थोड़ी कमी आ गई तो प्रामाणिकता के लिए वो देना आवश्यक है। हमारा निवेदन है, हमारा विनय है, हमारी भावना होती है कि हम रोज दोनों महाराज को रोज आते हैं। लेकिन छोटे महाराज जी के प्रति क्या हमारी कोई अभिनय हो गई जिससे कि हमसे उन्होंने आहार नहीं लिया? हम छोटे महाराज से दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि हमसे दया करके आहार ले लिया करें। हम उनके कहे अनुसार जो जो चीजों का त्याग दिलाएंगे वो सब त्याग कर देंगे। ये भी लिखा है, अब तो मान ही जाओ, अब तो कोई अब कल ले लेंगे भैया, महाराज ने कह दिया, मुस्कुरा दिया उन्होंने, क्या ले लेंगे। लेकिन त्याग करना पड़ेगा, जो चीज का त्याग करवाएंगे वो चीज। हमें तो बहुत आसानी रहती, देखो हमारे पास आहार देने आओगे, हमने नहीं पूछी, अपन सोचेंगे कि कोई ना पूछ तो महाराज के पास पहुंचो, सुबह कचू न कचू छुड़वाई दे, अगर उतर से यहां हो तो छोड़ दें, पहले ही से आए हमारे पास, अपन को आया, अपन को दो ही आनंद। न संस्तरो भद्र समाधि साधनम न लोक पूजा न च संघ मेलनम यतस्ततो ध्यात्म रतो भवानिशम विमुंच सर्वाम अपि बाह्य वासनाम। प्रश्न पूछ रहे कि समाधि में पाटा और गुरु भी साधक नहीं है, तृण चौकी शिल शैल नहीं समाधि के साधन, ये अर्थ समझ में नहीं आया। इसका हमने संस्कृत बोल दिया, इनने हिंदी में लिखा था न संस्तरो भद्र समाधि साधनम न लोक पूजा न च संघ मेलनम। अरे भाई, क्या बहुत अच्छा पाटा होगा तो तुम्हारी समाधि अच्छे से हो जाएगी? क्या बहुत अच्छा संस्तर बिछाया गया होगा मुलायम मुलायम तुम्हें संलेखना के समय, तो क्या उससे तुम्हारी समाधि ठीक हो जाएगी? अच्छा, बहुत सारे लोग तुम्हारी सेवा में खड़े हुए हैं, मुनि जन हैं, आचार्य भगवंत खड़े हैं, तो क्या उनके रहने से तुम्हारी समाधि ठीक हो जाएगी? न संस्तरो भद्र समाधि साधनम न लोक पूजा, बहुत जय जयकार हो रही कि आपने समाधि ली, इससे क्या तुम्हारी समाधि अच्छी हो जाएगी? कहते नहीं, समाधि तो तुम्हारे परिणामों से अच्छी होगी, तुम्हारे परिणामों से बिगड़ेगी, इनका तो सिर्फ सहयोग है, ये तो आपको सहयोग कर देंगे, परिणाम आपको अपने संभालना स्वयं पड़ेगा। इसलिए ये द्वात्रिंशति का है, सामायिक पाठ है, ये सामायिक पाठ में है कि न संस्तरो भद्र समाधि साधनम, संस्तर इत्यादि समाधि के साधन नहीं है। झंडे का रंग केशरिया क्यों होता? वही अपन लोग मानते ना, शुभ लेशा है, इसलिए केशरिया रंग का झंडा बना देते, और अपन ने पांच रंग वाला भी बना दिया, वो पांच रंग भगवान के तीर्थंकरों के पांच रंग हैं। ये भैया घड़ी हो गया 6:05, ज्यादा ही हो गए। इस तरह पांच रंग का झंडा भी बनाया जाता और केशरिया भी बनाया जाता, दोनों ही झंडे। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं। रहे ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं। बने जहां तक इस जीवन में, औरों का उपकार करूं। बने जहां तक उपकार करूं, औरों का उपकार करूं। आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज।